नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में का, तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस को। सौमित्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार एंड गुड इवनिंग।
सौमित्र जी, एशियाई खेल संपन्न हो गए हैं और अब विश्व कप का खुमार जो है वो बढ़ने लगा है। एशियाई खेलों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कल का जो मैच रहा उसमें भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
मुझे लग रहा है कि कल का अगर तुलना किया जाए तो एशियन गेम्स का प्रदर्शन बेहतर रहा।
बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि उसमें ऐसा पहले दिन से लास्ट दिन तक हमने पदक जीता
जी।
इंडियन का बैटिंग वैसा नहीं रहा था, 3 विकेट गिर गया था। अगर विराट कोहली का कैच पकड़ लिया तो पता नहीं क्या होता।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और भी जो खबरें होंगी उन पर आपसे चर्चा करेंगे। अब तक जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। हैदराबाद में क्रिकेट विश्वकप में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 323 रन का लक्ष्य दिया। जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट के 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर हॉकी टीम की घोषणा। फिनलैंड के वांटा में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। और जम्मू कश्मीर दिव्यांग क्रिकेट टीम ने नेशनल 2020 दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण जीता। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट विश्वकप की। हैदराबाद में क्रिकेट विश्वकप में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को 323 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 322 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 33वें ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बना लिए थे। 157 रन 5 विकेट पर और 33वां ओवर, क्या लगता है कहीं संभावना नजर आ रही है नीदरलैंड को, न्यूजीलैंड के सामने कुछ टिकने की?
अगर ये टीम न्यूजीलैंड नहीं हो के शायद ऑस्ट्रेलिया या इंडिया होता तो मुझे बोलता कि चांसेस हैं
जी।
कि आप देखिए, ये नीदरलैंड्स में अपसेट करने का अभी शायद नामुमकिन है। जबकि मिडिल ऑर्डर में उनका बैटिंग में 50 रन हुआ है कॉलिन का, मगर ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड को सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव विन से कोई रोक पाएगा।
बिल्कुल, और न्यूजीलैंड ने शुरुआत में ही इस टूर्नामेंट के शुरुआत में ही जो पहला मैच था उसमें भी जीत दर्ज की थी। तो क्या लगता है इस पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड एक प्रबल दावेदार के रूप में?
हमेशा मुकेश, आप देखिए कोई भी वर्ल्ड कप में वो डार्क हॉर्स मारा जाता है
जी,
हमेशा। आप देखिए लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही था। अब इस वर्ल्ड कप में ऐसे देखिए, पहला मैच में इंग्लैंड को 9 विकेट में हराना इतना आसान नहीं है, और खास करके उनका सारा बैटिंग लाइनअप का लन देखिए, फिर भी 300 रन से ज्यादा बनाना और उसका मोस्ट बैलेंस साइड, और सब खास करके ये टीम में काफी प्लेयर्स है जिसका इंडिया में खेलने का काफी एक्सपीरियंस है क्योंकि वो आईपीएल खेल रहे हैं
जी।
वो सारे प्लेयर्स जो है देखिए वो रन बना रहे हैं, और जो सैंटनर जैसे लेफ्ट स्पिनर है ये इंडियन कंडीशन में बहुत डेंजरस है। ताकि न्यूजीलैंड को आप डार्क हॉर्स जरूर मानिएगा, हालांकि जैसे हमने इसको बोला, आपने अब जो सवाल किया, साउथ अफ्रीका को भी आप मानिए कि इतना रिकॉर्ड जीत
जी,
तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों टीम भारतवर्ष छोड़ के ये डेंजरस टीम्स है।
बिल्कुल डेंजरस टीम बन सकती हैं, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो चेन्नई में क्रिकेट विश्वकप में भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। 200 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम ने 41 ओवर और 2 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। विराट कोहली ने 85 और केएल राहुल ने नाबाद 97 रन की पारी खेली। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, तो सुनते हैं रिपोर्ट।
केएल राहुल और विराट कोहली की बड़ी अर्धशतकीय पारियों से भारत ने शुरुआती झटकों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को 52 गेंद शेष रहते 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय विश्व कप में अपने अभियान का शानदार आगाज किया। राहुल विजयी छक्का लगाकर 97 रन पर नाबाद रहे। अपनी इस नाबाद पारी के लिए राहुल ने 115 गेंद खेली और 8 चौके तथा 2 छक्के लगाए। कोहली ने शुरू में मिले जीवन दान का पूरा फायदा उठाते हुए 116 गेंद पर 6 चौकों की मदद से 85 रन बनाए। भारत को 200 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन उसके शुरुआती 3 बल्लेबाज केवल 2 रन पर पवेलियन लौट गए। कोहली और राहुल ने भारत को न सिर्फ इस स्थिति से उबारा बल्कि 4थे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी कर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर 3 गेंद में केवल 199 रन ही बना सकी। डेविड वार्नर ने 41 और स्टीव स्मिथ ने 46 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रविन्द्र जडेजा ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट लिया। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने 2 और मोहम्मद सिराज तथा हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट हासिल किया। कनकलता स्पोर्ट्स कैप।
तो पहले दो रन पर तीन विकेट गिरना, उसके बाद विराट कोहली का मैच में आना और उनका कैच छूटना, शायद यही जो कारण रहा जिसकी वजह से जो टीम थी वो जीतने में सफल रही।
हाँ, ये आप कह सकते हैं मुकेश, मगर इंडिया ये भी जरूरी है कि हमारे इंडियन बैटिंग लाइनअप काफी डीप है
जी।
इसके बाद अगर मान लीजिए कोई विराट कोहली का कैच ले लिया, हमारे पास हार्दिक पांड्या है, मैच विनर है,
बिल्कुल
रविंद्र जडेजा है, मैच विनर है, ये सब कोई रन कर सकता है, मगर ऑस्ट्रेलियन का बॉलिंग अटैक भी अच्छी है, इसलिए वो पहला तीन विकेट ले लिया था
जी।
मगर उल्टा से देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। ये अगर मान लीजिए 250 या 300 रन का लक्ष्य होता तो इंडिया प्रॉब्लम
हो सकता
जी। और उसका देखिए, उसका जो प्रॉब्लम है, 10 विकेट में 6 विकेट स्पिनर्स को गया
जी।
उसका दिमाग में एक डर है स्पिन का, वो स्पिन उसको अगर वो काबू नहीं कर पाया, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वर्ल्ड कप का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हारा है, कभी जिंदगी में नहीं हारा है, तो इसको यहां से निकल के उसको अच्छी तरह खेलना है और दिमाग से वो जो डर स्पिन का है उसको निकाल के फिर नॉर्मल क्रिकेट खेलना है।
और एक खबर यह आ रही है कि सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अभी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए और इस कारण से जो दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ भारत का जो मैच होना है उसमें वो नहीं खेल पाएंगे। कहीं से भारत के लिए ये थोड़ी सी निराशाजनक खबर है?
शुभमन गिल के लिए निराशाजनक है
जी,
भारत के लिए नहीं
जी,
क्योंकि भारत के लिए इतना बैकअप प्लेयर्स है, जैसे ईशान किशन को ओपन किया गया,
कोई समस्या पैदा होने वाली
नहीं होने, वैसे ईशान किशन रन नहीं कर पाया
जी।
मगर ये आपको थोड़ा आपको मैं पीछे लेके जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, मौके पे चौका
जी,
जिसको नहीं खेलना था श्रेयस अय्यर नहीं खेला, कुछ किसने खेला, राहुल खेला, जिसको जगह पक्का नहीं था मिडिल ऑर्डर में, आप देखिए कैसे रन कर रहे हैं और आगे मैच जीता के जाएंगे। मगर आपका सवाल का जवाब में, इंडियन टीम को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अफगानिस्तान है और शुभमन गिल को जाहिर है कि इसको रेस्ट दिया जाए और लेटर ऑन मतलब टूर्नामेंट जब बढ़ेगा आगे जब टफ मैचेस होंगे उसमें हम वापस आए।
और अगर हम कल आने वाला कल है उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, निश्चित तौर पर फेवरेट इंग्लैंड
नहीं, अभी देखिए पहला मैच 9 विकेट के हारने के बाद फेवरेट तो है नहीं
जी।
और धर्मशाला में जो वेदर कंडीशंस है उसमें बॉल स्विंग करेंगे और आपको मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश के पास वो बॉलर्स हैं स्पिन एंड पेस जो ट्रबल कर सकता है इंग्लैंड बैटिंग को, और 9 विकेट का जो डर जो पहला मैच
भरा
हुआ है और बांग्लादेश को आप अंडरडॉग्स नहीं कह सकते, मैं बोलूंगा 50-50।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर भारतीय खिलाड़ी जब वापस आ रहे हैं निश्चित तौर पर उनका अभिनंदन होना ही चाहिए और प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व कर रहे हैं।
ये हमेशा उसने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब ओलंपिक से वापस आए थे
जी
सेम थिंग किया, ये इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है। मगर खास करके देखिए प्रधानमंत्री जो कर रहा है, मगर खेल कूद भारतवर्ष में खेल कूद में गवर्नमेंट ने जितना अटेंशन दिया है जितना पैसा खर्च के कोई कभी नहीं किया,
बिल्कुल, और उसी का परिणाम सामने आया है कि खेलों में हमारा जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है।
एब्सोल्युटली, और मुकेश इस तरफ का सपोर्ट हमने मेरा 40 साल का पत्रकार
कभी
मैंने देखा नहीं और इसका रिजल्ट आ रहा है। हम ओलंपिक्स की बात नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एशियन गेम्स में एशियन पावर हाउस में टॉप 5 में आना बहुत अच्छी बात,
बड़ी बात जी।
और देखा जाएगा और 10 साल बाद 12 साल बाद जब ओलंपिक्स आएंगे 2030 में शायद इंडिया में जब वो ओलंपिक्स होंगे हमारा पदक का नंबर और भी बढ़ेगा। मगर फिलहाल गवर्नमेंट का सपोर्ट अमेजिंग, नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट अमेजिंग, और खास करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो काम किया है, खेलो इंडिया जो प्रोजेक्ट्स चल रहा है, टॉप्स प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इसका परिणाम आपको सामने दिख रहा है।
हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय जूनियर हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह टीम 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मलेशिया के जोहर में 11वीं सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेगी। तो आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय जूनियर हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ये टीम 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मलेशिया के जोहोर में 11वें सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेगी। इस टूर्नामेंट में इस बार 8 टीम भाग लेंगी। भारत को पूल बी में मलेशिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है, जबकि पूल ए में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन शामिल है। इस टूर्नामेंट के बारे में जूनियर हॉकी टीम के कोच सीआर कुमार ने कहा कि चयन समिति ने टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के लिए एक पूरी तरह से संतुलित टीम का चयन किया है। ये टूर्नामेंट एफआईएच जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 6 देशों का आकलन करने और समझने का भी अवसर है। मोहित एचएस और रणविजय सिंह यादव को गोलकीपर बनाया गया है। डिफेंडर में अमनदीप लाकड़ा, रोहित, सुनील जोजो, सुखविंदर, अमीर अली और योगेंद्र रावत शामिल हैं। मिडफील्ड में पुवन नसीबी, विष्णुकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, अमनदीप, सुनील लाकड़ा और अब्दुल अहद को शामिल किया गया है। फॉरवर्ड में उत्तम सिंह, अरुण साहनी, आदित्य लालगे, अंगद बीर सिंह, गुरजोत सिंह और सतीश बी शामिल हैं। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
जो टीम चुनी गई है उससे कप जीतने के लिए, जैसा कि कोच ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर एक संतुलित टीम चुनी गई है, आपकी क्या राय है?
देखिए एक मुकेश, मलेशिया में 2 खास टूर्नामेंट है, एक तो सुल्तान जोहर कप
जी
और एक है अजलान शाह
कप।
ये दोनों टीम हमेशा इंडिया पार्टिसिपेट करते रहे
जी।
इंडिया का स्ट्रेटेजी साफ है, अजलान शाह में सीनियर टीम खेलते हैं और जोहर कप में जूनियर टीम खेलते हैं। ये हमारे फ्यूचर है, इंडियन फ्यूचर है और खास करके जो हमारा जो मोमेंटम हॉकी टीम का है, खास करके हमने जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के पेरिस में क्वालिफाई किया, हमेशा कोई भी अच्छा टीम अगर वर्ल्ड टॉप 6 में टॉप 5 में आना चाहिए उसका एक फीडर सिस्टम होना चाहिए और ये जोहर में हम पता चलेगा कि हमारा फीडर सिस्टम कितना स्ट्रांग है।
फिनलैंड के वांटा में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भारतीय दल का नेतृत्व करेगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन 3 वर्ष बाद किया जा रहा है क्योंकि कोविड के कारण 2019 के बाद ये टूर्नामेंट नहीं हुआ था। पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएंगी क्योंकि पीवी सिंधु के पास एक खिताब जीतने की बहुत बड़ी दरकार है,
बहुत जरूरी है, खास करके अगर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है तो पीवी सिंधु के हमेशा हर ये पहले तो बात है ये कि बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट है, इसमें खास करके पॉइंट्स मिलेंगे आपको और खास करके सिंधु के नाम आपने जिक्र किया, सिंधु का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, एशियन गेम्स में हार चुका
बिल्कुल,
और ये जो आर्कटिक ओपन जो फिनलैंड में होंगे इसका फर्स्ट राउंड में उसका जो ओपोनेंट है वो एक भी वर्ल्ड चैंपियन है, नोजोमी ओकुहारा है और नोजोमी ओकुहारा को पार करके अगर सेकेंड राउंड में हम जब प्रवेश करेंगे तो हम शायद मेडल का उम्मीद करेंगे।
जम्मू कश्मीर की राज्य दिव्यांग क्रिकेट टीम ने फाइनल में मुंबई को 35 रन से हराकर नेशनल 2020 दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का 3रा संस्करण जीत लिया। उदयपुर में जम्मू कश्मीर के माजिद ने फाइनल में हरफन मौला प्रदर्शन करते हुए 21 गेंद में 37 रन बनाए और 25 रन देकर 2 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कप्तान वसीम इकबाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। फाइनल में रविन्द्र सांती की अगुवाई वाली मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। जम्मू कश्मीर ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 161 रन बनाए, जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 126 रन ही बना सकी। अमरीका के टॉमी पॉल शंघाई मास्टर्स के 4थे दौर में पहुंच गए हैं। 3रे दौर के मैच में टॉमी ने फ्रांस के आर्थर फिल्स को 6-4, 6-7, 6-4 से हराया। अन्य मैच में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव भी जीत के साथ 4थे दौर में पहुंच गए हैं। दिमित्रोव ने करण खचानोव को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक संग्रहालय और रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में बच्चों के बीच खेल के माध्यम से ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि नीदरलैंड की जो टीम है वो 6 विकेट पर 181 रन बना चुकी है, हालांकि जीत अभी भी काफी दूर है उससे। तो श्रोताओं, इसके बाद आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्समैन टीम को दीजिए इजाजत। सौमित्र जी, आप हमारे स्टूडियो में और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार,
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।